गेट के अंदर वो चली गई थी और अविनाश एक बार फिर सिंघानिया अंपायर की ओर रवाना हो चुका था। अब आगे वही सब के सब उस वक्त होटल के बाहर जमा थे। सुमित ने जो कुछ भी हुआ था वो सारी बातें ए टू जेड उन तीनों को भी बता दी थी और तीनों के ही चेहरे हैरान और परेशान हो उठे थे। वहीं दादाजी जी के उन सबके एक साथ जाने पर थोड़ा सा एतराज़ हुआ था और साथ ही साथ उन्होंने उस वक्त के लिए नानी माँ को समझा दिया था, लेकिन उनका दिल खुद बेचैन हो उठा था। इसीलिए उन्होंने अपने ड्राइवर को फ़ोन मिला दिया, जो ड्राइवर आकाश सुमित को वहाँ से लेकर सुमित के होटल गया था। तब दादाजी जी ने उस ड्राइवर को फ़ोन करके पूछा, अच्छा ब्रजेश, वो ये सब लोग कहाँ हैं, कहाँ ड्रॉप किया है तूने सबको? तो ब्रजेश ने बता दिया कि बड़ी मालिक, वो सबके सब सुमित बाबा के होटल में आए हैं। तब दादाजी कुछ सोच में पड़ गए और दादाजी भी बिना देरी किए अपनी एक दूसरी गाड़ी में अब सुमित के होटल में पहुंच चुके थे, क्योंकि उन्हें कुछ अनहोनी की आशंका लग रही थी। अब जैसे ही सुमित, जो कि वो सारी बातें उन तीनों को बता रहा था, दादाजी वहीं छुपकर वो सारी बातें सुन चुके थे और दादाजी के चेहरे से पसीना निकलना शुरू हो चुका था और फिर दादाजी खुद को रोक नहीं पाए। तुरंत वो सबके सामने जाकर खड़े हो गए थे। दादाजी को इस तरह से अपने सामने देखकर वो चारों थोड़ा सा घबरा से गए थे और हैरत से बोले, अरे दादाजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब दादाजी ने सुमित की ओर देखकर ठंडे स्वर में कहा, कहाँ है वो आदमी, बोलो, जवाब तो मुझे, कहीं वो अरमान के साथ तो नहीं है? सुमित हैरानी से दादाजी की ओर देखकर हिचकिचाते हुए बोला, दादाजी आप जानते हैं कौन और वो आदमी कौन है? वो आदमी तो अरमान के साथ है, वो इस वक्त अंदर है और कितनी बार दरवाज़ा खटखटा चुका हूँ, लेकिन अरमान दरवाज़ा खोलने के लिए तैयार नहीं है। तब दादाजी सुमित के पास गए और बेचैन होकर बोले, कुछ भी करके अरमान को वहाँ से बाहर निकालो। अरमान उस आदमी के साथ रहना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। निकालो उसे बाहर, तुम सुन रहे हो ना मेरी बात, निकालो उसे बाहर। दादाजी की बात सुनकर सभी हैरान हो रहे थे। सबके मन में उस वक्त कितने सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन वो दरवाज़ा खटखटाकर थक गए थे। अरमान ने दरवाज़ा नहीं खोला, न जाने वो उस आदमी से क्या बात कर रहा था। अरमान को उससे बात करते हुए 2 से 2.5 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे। वहीं अरमान सिंघानिया, जो कि 1 मिनट भी बिल्कुल भी अपना वक्त किसी भी कीमत पर वेस्ट नहीं किया करता था, वो इस तरह से एक आदमी के साथ अंदर था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहीं दादाजी भी अब परेशान हो गए थे। दादाजी को परेशान देखकर सभी ने बारी बारी से दादाजी से सवाल करना शुरू कर दिया था कि आखिरकार ऐसी क्या बात है दादाजी, जो आप इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तब दादाजी ने उन सबको बारी बारी से देखा और उन्हें शांत कराते हुए बोले, मैं आप लोगों को आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन इस वक्त अरमान का उस आदमी के साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फटाफट से कुछ भी करो और उस आदमी को दरवाजे से बाहर निकालो। अब सब हैरान हो गए थे, उन्हें समझ में नहीं आया कि वो करें तो करें क्या, क्योंकि अरमान तो बाहर आने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन सुमित के पास उस दरवाजे की मास्टर की थी, लेकिन बिना अरमान की परमिशन के वो इस तरह से उस मास्टर की का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि सुमित किसी भी सूरत में अरमान की नाराजगी मोल नहीं ले सकता था। तब सुमित की कश्मकश दादाजी ने समझ ली और वो सुमित की ओर देखकर शांत स्वर में बोले, मेरा बच्चा रुक जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो, लेकिन इस वक्त अगर उस सन की आदमी से अरमान को कोई अलग कर सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ आस्था बिटिया। आकाश, एक काम करो, फटाफट से आस्था बेटी को फ़ोन मिलाओ और मेरी बात करवाओ। अब जैसे ही दादाजी ने ये बोला, सब लोग दादाजी के इस तरह के हाव भाव देखकर हैरान तो हो रहे थे, साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा उन सबके मन में सवाल भी थे। लेकिन फिलहाल जो कुछ दादाजी कह रहे थे वो सब स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे थे। सो आकाश ने जल्दी ही आस्था को फ़ोन लगा दिया, आस्था जो कि अभी मेंशन के अंदर भी नहीं गई थी। जैसे ही फ़ोन बजा, उसने फ़ोन तुरंत अपने कानों पर लगा लिया था। तब दादाजी जल्दी से बोले, आस्था बिटिया, हम बात कर रहे हैं। तब आस्था चहकते हुए पूछती हैं, दादाजी कहाँ हैं आप? मैं बस मेंशन आ रही हूँ, फिर हम आराम से बैठकर बात करते हैं, बस 2 मिनट में आ रही हूँ, बाहर ही हूँ। अब जैसे ही आस्था ने यह बताया, दादाजी हड़बड़ाहट में बोले, नहीं नहीं बिटिया, हमारी बात सुनो, आप अभी और इसी वक्त ड्राइवर के साथ वापस सुमित बेटे के होटल में आ जाओ। अब जैसे ही दादाजी ने यह कहा, आस्था चौंक गई और असमंजस में बोली, लेकिन क्यों दादाजी, आप हमें वहाँ क्यों बुला रहे हैं? तब दादाजी बोले, बिटिया प्लीज़, इस वक्त कुछ भी सवाल मत करो, हमने जैसा आपसे कहा है आप वैसा ही करो, प्लीज़ आप यहाँ फ़ौरन आ जाओ। दादाजी की बात सुनकर आस्था समझ चुकी थी कि कोई ना कोई गंभीर बात है, इसलिए वो जल्दी से बोली, ठीक है दादाजी, मैं आ रही हूँ। ऐसा बोलकर आस्था ने फ़ोन रख दिया और ड्राइवर के साथ जल्दी ही वापस सिंघारिया मेंशन के दरवाजे से ही वो सुमित के होटल की ओर रवाना हो चुकी थी। वहीं धीरे धीरे अब टाइम बीत रहा था। ऑलरेडी अरमान को उस आदमी के साथ गए हुए 3 घंटे हो चुकी थे और इन 3 घंटों में दोनों ने एक दूसरे से किसी तरह की कोई बात नहीं की थी। अरमान उसके सामने टांग पर टांग रखकर बैठा हुआ था, साथ ही साथ राजवीर चिंदल भी उसके सामने टांग पर टांग रखकर बैठा हुआ था और दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे और दोनों के बीच किसी तरह की कोई कन्वर्सेशन नहीं हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को बिना किसी इमोशंस के वो देखे जा रहे थे। ये बड़ी अजीब सी बात थी, लेकिन फिलहाल उनके बीच किसी तरह की कोई बातचीत नहीं थी। वहीं और आस्था का दिल अब बेचैनी से घिर उठा था, वो सोचने लगी थी, आखिरकार बात क्या हो सकती है, दादाजी उसे इस तरह से कैसे बुला सकते हैं, सब कुछ ठीक तो है ना, क्या वो अरमान से इस बारे में पूछ ले। आस्था के मन में ये सवाल आते ही आस्था ने तुरंत अरमान को फ़ोन लगा दिया था। वही अरमान जो कि 3 घंटे लगातार एक जगह ही बैठा हुआ था, तुरंत फोन आने पर उसका ध्यान थोड़ा अलग हुआ और फोन पर आस्था का नाम देखकर उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई थी। वही राजवीर जिंदल अपने लबों से हंसने लगा था और इंटरेस्ट लेते हुए बोला, बोला था ना तेरी जिंदगी में भी आएंगी, अब उसे संभाल कर रखना, ये दुनिया बहुत बुरी है, इस पूरी दुनिया से उसे बचा कर रखना। ये बोलते हुए राजवीर बड़ा ही अजीब और पागल सा लग रहा था। वही अरमान उसकी बात सुनकर मुस्कुराए जा रहा था और बिना एक्सप्रेशन के बोला, बिल्कुल रखूंगा। अब आस्था का फोन आने पर मुस्कुराकर कान पर लगा लिया। जुनून भरी आवाज में बोला, जी हुकुम कीजिए। अब अरमान की इस तरह की बात सुनकर आस्था हैरान हो गई और फोन की स्क्रीन को घूरने लगी और कुछ पल सोचते हुए बोली, अरमान जी आप ठीक तो है ना। अब जैसे ही आस्था ने यह सवाल किया अरमान के माथे पर बल पड़ गए और वो सर्द आवाज में बोला, आप मुझे ये सवाल क्यों कर रही हैं, मैं ठीक हूं या नहीं हूं। तब आस्था हड़बड़ाकर बोली, वो हम सुमित भैया के होटल में जा रहे हैं, दादाजी को फोन आया था, उन्होंने हमें वहीं बुलाया है, क्या आप भी वहीं हैं। आस्था ने जैसे ही मासूमियत में अरमान से ये पूछा अरमान के माथे की लकीरें उभर आई थी और वो बोला, ठीक है आप यहाँ आ जाओ। ऐसा बोलकर अरमान ने फोन रख दिया था। अरमान का इतना रूखा सा जवाब सुनकर आस्था हैरान हो गई थी और बस मन में ये प्रार्थना करते हुए आ रही थी कि बस सब कुछ ठीक हो। वही राजवीर जिंदल अब खड़ा हुआ और अरमान को एक बार फिर गले से लगाकर बोला, मैं चलता हूँ।
तुम्हारी वाली तुम्हारे पास आ रही है और मेरी वाली मेरा इंतजार कर रही है। ऐसा बोलकर राजवीर जिंदल ने जल्दी ही दरवाजा खोल दिया था, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकल पाता अरमान उसे रोकते हुए बोला, आप फिर कब मिलेंगे। तब राजवीर तिरछा मुस्कुराकर उसकी ओर देखकर बोला, मैंने तुझे कहा था ना डेस्टिनी रही तो मुलाकात होगी, और फिक्र मत कर मैं अपने चेले को इतनी आसानी से नहीं भूलूंगा। ये बोलकर राजवीर जल्दी ही लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ उस दरवाजे से बाहर निकल गया और वहां से सीधा जाकर पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी उसने अपने विला की ओर रवाना कर दी। उस वक्त सभी लोग उस कमरे के सामने से हट गए थे क्योंकि दादाजी ने उन सबको वहां से हटने के लिए कह दिया था कि दादाजी नहीं चाहते थे कि वो इंसान दादाजी को देखें। अब उसके वापस जाने के बाद दादाजी ने उन सबको बारी बारी से घूर कर देखा और सख्त आवाज में बोले, चलो सभी। अब इस वक्त अरमान के कमरे में मौजूद था। वहीं अरमान ने जैसे ही दादाजी और बाकी सबको वहां एक साथ देखा तो वो तुरंत दादाजी के सामने जाकर खड़ा हो गया और सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, ये क्या किया आपने, आस्था को यहां पर क्यों बुला लिया है, आपको उसे बुलाने से पहले मुझसे एक बार पूछना चाहिए था। दादाजी से अचानक अरमान ने अपने गिरेबान पकड़ लिया और गुस्से से बोले, तुम उस घटिया इंसान के साथ क्या कर रहे थे। अरमान ने अपने गिरेबान को दादाजी के हाथों से छुड़ा लिया था और दादाजी की ओर दांत पीसते हुए देखकर बोला, वो इंसान मेरा गुरु है, आप उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। दादाजी मैं उसके बारे में इतनी सी भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ये बोलकर बिना एक्सप्रेशन के अरमान वहां से बाहर निकल गया था और दादाजी सदमे में बैठ के कोने पर धीरे से बैठते चले गए थे। वहीं दूसरी ओर यहां राजवीर जिंदल जैसे ही पार्किंग एरिया से अपनी गाड़ी लेकर निकला, ठीक उसी वक्त आस्था की गाड़ी सुमित के होटल में आ गई थी। और जैसे ही आस्था गाड़ी से बाहर निकली और अचानक से उसकी नज़र राजवीर जिंदल पर पड़ी तो आस्था की आंखें एकदम से चौड़ी हो गई थीं, क्योंकि उसके सामने उसके माँ बाप का खूनी खड़ा हुआ था जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया है। उसे अपने सामने देखकर आस्था का बीपी एकदम से ही बढ़ चुका था और अचानक से वो जोरों से चीख उठी। लेकिन उस वक्त राजवीर जिंदल आस्था को देख नहीं पाया था क्योंकि उस पर अपनी पत्नी के पास जाने का भूत सवार था, इसीलिए जल्दी ही वो अपने घर की ओर रवाना हो चुका था। वहीं अरमान जो कि वहां से सीधा बाहर निकल कर आया था और उसने जैसे ही आस्था को इस तरह से चीखते हुए देखा, अरमान हैरान हो गया और वो तुरंत भागकर आस्था के पास गया। इससे पहले कि आस्था बेहोश होती अरमान ने उसे गोद में उठा लिया था और वापस से उसे गाड़ी में बिठाकर तुरंत आस्था को घर लेकर चलने का ऑर्डर दिया, क्योंकि इस वक्त आस्था की आंखें बंद थीं और रश्मि आज हॉस्पिटल में ही गई थी, वो रौनक के साथ रुकी हुई थी। इसीलिए अरमान ने जल्दी ही रश्मि को फोन कर दिया कि आस्था इस तरह से बेहोश हो गई है। तब रश्मि ने उसे फिक्र भरी आवाज में बोलती है कि वो सीधा उसे घर ले आए, वो मिनी हॉस्पिटल में ही उसे चेक कर लेंगी। इसीलिए अरमान जल्दी उसे लेकर घर जाने लगा। वहीं दादाजी अब बाकी सबके साथ इस वक्त वीआईपी रूम में थे और सब लोग बारी बारी से दादाजी की ओर ही देख रहे थे। तब आहान अपनी जगह से उठा, दादाजी के पास में उनका हाथ पकड़कर बैठ गया और दर्द भरी आवाज में बोला, क्या बात है दादाजी, क्या हुआ है, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं दादाजी, ऐसा कुछ है जो हमें नहीं पता। तब आकाश और सुमित और ध्रुव ने भी यही सवाल दादाजी से किया था। तब आहान हल्की सी नमी लाकर अपनी आंखों में बोला, मैं जानता हूं दादाजी की मैं आपका सगा पोता नहीं हूं, लेकिन आप मेरा यकीन करें मैं आपको और अरमान भाई बहुत प्यार करता हूं,
और आप दोनों को दिल से अपना मानता हूँ। मेरे दादाजी बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं और जाने से पहले मेरी जिम्मेदारी वो आपको सौंप कर गए थे, और तब से आपने मुझे बहुत अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया है, और बड़े भाई के रूप में मुझे अरमान भाई जैसे भाई मिले हैं। आप यकीन माने दादाजी, मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। लेकिन दादाजी, आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपके परिवार का हिस्सा ही नहीं हूँ? क्या बात है दादाजी, प्लीज बताइए। अब सभी दोस्त एक एक करके दादाजी से बात करने लगे थे, लेकिन दादाजी उन्हें कुछ नहीं बताना चाहते थे। तभी सुमित, आकाश तुरंत दादाजी के सामने जाकर बैठ गए और दादाजी को हौसला देते हुए बोले, दादाजी जब तक आप हमें सारा सच नहीं बता देते, तब तक हम आपको यहाँ से किसी भी कीमत पर जाने नहीं देंगे। अब जब वो दोनों इस तरह से वहां बैठ गए, दादाजी कुछ पल उनकी ओर देखने लगे और फिर बेचैनी से बोले, बेटा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये आदमी यहाँ इस तरह से अरमान को मिल जाएगा। इस आदमी को अरमान से दूर रखने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया था। अब तो सबकी क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो जल्दी से पूछते हैं, दादाजी प्लीज कुछ तो ऐसी बात है जो आप हमसे छुपा रहे हैं, बताइए ना, आप बातें गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? तब दादाजी ने बारी बारी से सबको देखा और उदास होकर बोले,